न पराधस्ति देहिन श्लोकों के शब्दार्थ ऐसे हैं, मेरे पीछे बोलिए। मृत्यु मृत्यु बुद्धिमता बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा अपहो दूर रहना चाहिए, यावत जब तक बुद्धि बल उदयम बुद्धि तथा शारीरिक शक्ति रहते हुए, यदि यदि असो वो मृत्यु न निवर्ते तो रोकी नहीं जा सकती, न नहीं अपराध अपराध अस्ति है देहिन, मृत्यु संकट में फंसे व्यक्ति का। ट्रांसलेशन एंड पर्पट ही डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक मृत्यु से बचना रहे बचता रहे, हर देहधारी का यही कर्तव्य है। यदि उद्योग्य करने पर भी मृत्यु को हटाया नहीं जा सके तो मृत्यु के समक्ष खड़ा मनुष्य अपराधी नहीं है। तात्पर्य, असामयिक मृत्यु का सामना करने वाले व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है कि वो अपनी रक्षा का पूरा प्रयत्न करे। यद्यपि मृत्यु ध्रुव है किंतु प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उससे बचे और बिना विरोध के मृत्यु को न प्राप्त हो, क्योंकि प्रत्येक जीव नित्य आत्मा है। क्योंकि इस जगत में मृत्यु निंदनीय जीवन पर थोपा गया दंड होती है, अतः वैदिक संस्कृति मृत्यु से बचने पर आधारित है। त्यक्त्वादेयं पुनर्जन्म नैति, हर व्यक्ति को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करके मृत्यु तथा पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करे और जीवित रहने के लिए संघर्ष किए बिना मृत्यु के सामने घुटने न टेके। जो व्यक्ति मृत्यु को रोकने का प्रयास नहीं करता वो बुद्धिमान मनुष्य नहीं है, क्योंकि देवकी को आसन्न मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था। अतः वसुदेव का कर्तव्य था कि उसे प्राणपण से बचाते। अतः उन्होंने कंस को फुसलाने का दूसरा तरीका सोचा जिससे देवकी को बचाया जा सके। ओम ज्ञानदिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपं सग्रजातं सगन रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता से विशाखानुतंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंद। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण ऐसे एक ग्रंथ है जो कलियुग में हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए समर्थ है, और महान भक्तों के जो द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसमें कुछ त्रुटि नहीं हो सकती है। त्रुटि हमें हो सकती है, लेकिन हमें जो आज प्राप्त हुआ है तो उससे हमें लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो भी है आज के प्रसंग जो श्रील सुखदेव गोस्वामी के द्वारा बताया गया है, तो कल आप लोग सुने होंगे किस प्रकार मृत्यु ये संसार को जकड़ा है मृत्यु के भय में, ऐसे कि ये भौतिक संसार नहीं, ये भौतिक जगत से लेकर स्वर्ग तक, स्वर्ग के इतने ऊंचे लोक में रहने वाला देवता लोग भी ये मृत्यु के द्वारा भयभीत है। वहाँ पर भी मृत्यु का राज चल रही है। वैकुंठ में उनका प्रभाव नहीं है, मृत्यु का प्रभाव नहीं होती है, लेकिन जब तक भौतिक जगत का विस्तार है तब तक मृत्यु अपने प्रभाव को विस्तार करके रखा है। तो मृत्यु से, भौतिक जगत में रहते हुए हमें मृत्यु से बच नहीं सकते जब तक हमें भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करते। खास करके जो लोग भक्ति में हैं, भक्ति को स्वीकार किए हैं, तो वो लोगों को मृत्यु को इतना डरना नहीं चाहिए। और भक्ति को स्वीकार करने के बाद यदि वो मृत्यु को डरते हैं तो समझना चाहिए उनमें कुछ गड़बड़ है, क्यों मृत्यु जो है हाँ वो भक्ति के पास नहीं जाता। ऐसे कि मृत्यु की जो अध्यक्ष है जमराज, जो वो बता दिया कि जो लोग विष्णु के भक्त होंगे तो उनके पास नहीं जाना, तो पहले कह रखे हैं। तो आज ये श्लोकों के द्वारा प्रसंग, कल आप लोग सुने होंगे कि ये मृत्यु द्वारा सब डरे हुए हैं। अब मृत्यु क्या है? भय है। हाँ, ये मृत्यु के भय के द्वारा सब भयभीत है। तो आज ये प्रसंग के द्वारा हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भय करता है, एक देश दूसरे देश को भय करता है, एक जाति दूसरे जाति को भय करता है, अमेरिका रूसिया को भय करता है, रूसिया अमेरिका को भय करता है, इंडिया पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान भारत के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब क्यों है? हाँ, ये सब इसीलिए हो रही है, हम भगवान को भूल चुके हैं, हम भगवान को भूले हुए हैं, इसीलिए ये समस्या हमारे सामने है। और आत्मा के स्तर पर ये सब भय नहीं रहता, शरीर के स्तर पर व्यक्ति विचलित रहता है, ये भयभीत रहता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर हाँ ये भय उनको नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को कभी मृत्यु नहीं होती है, शरीर का मृत्यु होती है। प्रभुपाद जी बताए हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का मृत्यु होती है लेकिन आत्मा अमर है। भगवान कहते हैं कि शाश्वत है, ममे वांसु जीवलो के जीव भूत सनातन है, सनातन है, उनका कभी मृत्यु नहीं होती है। तो जब तक हमें शरीर के स्तर पर रहेंगे ये मृत्यु हमें डराएगा, ये मृत्यु के द्वारा हमें भयभीत रहेंगे, ये बात बताया गया। और आप लोग देखे होंगे ये मृत्यु इतने क्रूर है, इतने निष्ठुर है, वो आने के पहले एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आने के पहले उनके कई दिनों मृत्यु आने के पहले उनका अन्न पानी छूट जाती है, उनका खाना पीना बंद हो जाती है। और जो घर के लोगों के साथ इतना दिन रह चुका है वो घर के लोगों को पहचान नहीं पाता है, हाँ, और कुछ बोलना चाहता है तो बोल नहीं पाता है। ये मृत्यु इतने ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो आता है वो मृत्यु ऐसे व्यक्ति को बना देता है। तो मृत्यु आने के पहले हमारा जो जीवन की जो लक्ष्य है उनको समझ जाना चाहिए। मृत्यु आने के पहले सारे शास्त्र में यही बताया गया है कि जब तक शरीर में शक्ति है और ये शरीर समर्थ है, रोगग्रस्त नहीं हो जाता है, ये शरीर रोगग्रस्त नहीं हो जाता है, तब तक हमें मृत्यु का तैयारी कर लेना चाहिए। उसके लिए ये सब चीजें आने के पहले, मृत्यु आने के पहले, शरीर में बुढ़ापा आने के पहले, शरीर रोगग्रस्त होने के पहले हमें मृत्यु का तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें प्रस्तुत हो जाना चाहिए मृत्यु का सामना करने के लिए। हाँ, और हमारा खास करके ये चीज को तो अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कि मनुष्य जीवन का जो असलियत है उनको हमें मृत्यु के पहले समझ जाना चाहिए। और समझ कर, खाली समझना नहीं है, समझना उसके ऊपर दृढ़ बन जाना, दृढ़ संकल्प लग करके उनको करना, खाली समझना और करने में दो तफात हो जाती है। एक चीज को समझ जाना और समझ करके जब करते हैं तो हमें पूरे पूरे इस चीज के ऊपर कन्विंस हुए हैं, समझ गए हैं, अच्छी तरह से ठीक से उनको जाने हैं। तो मृत्यु आने के पहले हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है उनके ऊपर हमें दृढ़ बन जाना चाहिए। केवल कलिजुग में केवल भागवत का श्रवण करके हमें मृत्यु रूपी भय को पार जा सकते हैं। आप लोग जाने होंगे, सुनते होंगे कि परीक्षित महाराज को जब नोटिस हो गया, खबर हो गया कि 7 दिन के भीतर मृत्यु होना है, तो ये 7 दिन को परीक्षित महाराज अति गंभीर रूप में लिए, अति गंभीरता के साथ लिए। 7 दिन हमें जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति का ये 7 दिन के भीतर मृत्यु होनी है, आपका हो, मेरा हो, कोई किसी का भी हो, 7 दिन के, किसी का 8 दिन में मृत्यु नहीं होती है, इस 7 दिन के भीतर सबका मृत्यु होनी है। लेकिन परीक्षित महाराज को जब पता चला कि मुझे आज से 7 दिन के भीतर मृत्यु होना है, तो 7 दिन को वह बड़े गंभीरता के साथ अपने जीवन में लिया। और इसी बात को हमें भी ये स्वीकार करना है, हमारे जीवन में जो भगवान की सेवा आती है, कि नाम जप करते हैं, कि भगवान की कथा को श्रवण सुनते हैं, तो बड़े गंभीरता के साथ ही उस चीज को हमें लेना है। भगवान का नाम जप हो, कि भगवान की सेवा हो, कि भगवान की कथा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चीज को जब हमें लेते हैं तो गंभीर के साथ उस चीज को हमें लेना है। और जितने ये चीज को हमें गंभीर के साथ लेंगे उतने गंभीर, इतने जल्दी हमें हमारे जीवन में कृष्ण को पाएंगे। और जो व्यक्ति के जीवन में कृष्ण आ गए हैं तो उनका जीवन में मृत्यु नहीं होती है। जहां पर कृष्ण होते हैं तो वहां पर मृत्यु नहीं होती है, जहां पर सूर्य होती है वहां पर अंधेरा नहीं होती है। और जो व्यक्ति कृष्ण को पाया है, जो व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर लिया है तो उनका कभी मृत्यु नहीं होती। ये बात भी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताए हैं, कहते हैं प्रतिजानी न भक्त प्रणश्यति, अर्जुन ये दुनिया को बताओ मेरा भक्त का विनाश मैं देख ही नहीं सकता, मेरा भक्त का मृत्यु कभी हो ही नहीं सकता। ये बात भी भगवान भगवद गीता में पहले डिक्लेरेशन कर दी है। इसलिए भक्तों को कभी ये मामले में, और भक्तों लोग इसका परवाह नहीं करते हैं, भक्तों को मृत्यु का चिंता नहीं होती है, चिंता होती है कैसे मैं अधिक से अधिक भगवान का भक्ति, भगवान का सेवा करूं, ये भक्त का चिंता की विषय होती है, सोच विचार की विषय होती है। तो यहां पर हमें भक्ति के लिए प्रयास करना है, मृत्यु के लिए हमें प्रयास करके भी मृत्यु से हमें बच ही नहीं सकते हैं। तो हमारा यहां पर कर्तव्य है हमें भक्ति करना है। तो और यहां पर और एक बात है कि प्रत्येक जीवन में मृत्यु आएगा, भक्त हो या अभक्त हो, प्रत्येक के जीवन में मृत्यु आने वाली है। लेकिन भक्त के जीवन में जो मृत्यु आती है वो कैसे, ना बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, भक्त के जीवन में मृत्यु आएगा फेन सही। तो भक्त के जीवन में भी मृत्यु आती है, आएगी, और अभक्त के जीवन में भी मृत्यु आने वाली है। लेकिन भक्त के जीवन में जो मृत्यु आती है तो वो कैसे आती है, बिल्ली के मुंह में, जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा एकदम असहाय अवस्था में पड़ा रहता है, ऐसे भक्तों के एकदम हेल्पलेस होना चाहिए। मतलब भगवान मेरे संरक्षण करेंगे, ये शरणागति का एक बहुत बड़ी ताकत है, हाँ हेडलाइन है। भक्तों को यह कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अवश्य रखी भाई कृष्ण, भक्तों की भगवान के संरक्षण के ऊपर भक्तों को पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, और भक्तों के ऊपर पूर्ण रूप से वो सरेंडर होना चाहिए, डिपेंड निर्भर रहना चाहिए, भक्तों को पूरा पूरा भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। जब भगवान देखेंगे कि ये अपने प्रयास नहीं है, अपने तरफ से कुछ प्रयास नहीं रखा है, वो पूरा पूरा मेरे ऊपर निर्भरशील है, तब जाके भगवान ऐसे भक्तों का दायित्व को, ऐसे भक्तों का जिम्मेदार वो अपने ऊपर लेते हैं, ऐसे भक्तों का दायित्व को अपने ऊपर लेते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो बिल्ली का बच्चा जो बिल्ली के मुंह में होता है, ऐसे वो लेटा झूला रहता है, ऐसे लेटा रहता है, बस उनको कुछ चिंता नहीं रहता है, उनको पूरा पूरा ये बातों के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रहती है कि मैं जहां पर हूं मैं सुरक्षित हूं। उसी प्रकार एक भक्त को पूरा पूरा ये विषय के ऊपर पूरा पूरा साफ हो जाना चाहिए, मैं जो भक्ति को, जो चीज को अपनाया हूं, जो जगह पर मैं आज आश्रय लिया हूं, जिनके शरण में, जिनके चरण में आश्रय लिया हूं, शरण लिया हूं, वो एकदम निरापद सुरक्षित है। इसलिए और दो बात उनका मन में आना नहीं, बस एक ही भक्ति, एक ही बात है, उनमें और ऐड नहीं होनी चाहिए, बस ये बातों को, भक्ति के ऊपर पूरा उनका विश्वास रहना चाहिए। और माँ बिल्ली क्या करती है, तो बच्चा बिल्ली को अपने मुंह में लेकर के एक स्थान से उस सुरक्षित स्थान को ले जाता है। लेकिन अभक्त के जीवन में जब ये मृत्यु आती है, बिल्ली के मुंह में जब चूहा आती है, वही प्लेस सेम है, सेम प्लेस है, जगह समान है, लेकिन वो जगह में जब बिल्ली का बच्चा आता है वो अपने को सुरक्षित मानता है, लेकिन वही जगह में जब चूहा आता है अपने मृत्यु का यंत्रणा, जो कष्ट है, वो अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार ये भौतिक जगत में भक्त भी है, अभक्त भी है, लेकिन ये भौतिक जगत में रहते हुए भक्त जब भगवान के शरण में रहता है, मतलब भगवान के सुरक्षा में रहता है, तो मृत्यु उनको भयभीत नहीं कर पाता। लेकिन अभक्त जो होते हैं, भक्ति में न होने के कारण वो मृत्यु के द्वारा डरा हुआ रहता है। आप लोग जानते होंगे ध्रुव महाराज, जब भक्ति होने के बाद, भगवान के दर्शन के बाद जब भगवत धाम में लौट जा रहे थे, तो सामने मृत्यु आ गया, लेकिन ध्रुव महाराज रोक दिया, भगवत धाम जाने के लिए रोक दिया, लेकिन ध्रुव महाराज क्या किए, मृत्यु के शहर के ऊपर अपने चरण को रख करके वो भगवत धाम चले गए। तो इसीलिए ये जो मृत्यु शब्द है अभक्तों के लिए। एक बार एक साइंटिस्ट थे, तो अचानक उनके लेबोरेटरी में बैठकर कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो रिसर्च करते करते अचानक उनके जीवन में मृत्यु आ गई, और उनको मृत्यु आए नहीं, मृत्यु के आने के पहले कुछ सिम्टम्स होती है, लक्षण होती है, तो मृत्यु जब वैज्ञानिक के जीवन में आने वाली है, तो उसके पहले उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो जो हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर लोग जब उनके चारों तरफ खड़े हुए थे, तो भी जो साइंटिस्ट थे वो बड़े ही बड़े चैलेंज कर रहा था दुनिया के साथ, मृत्यु के साथ बड़ा चैलेंज कर रहा था। वर्तमान के विज्ञानी लोग ऐसे, हम जानते हैं ये भौतिक जगत जो है मृत्यु लोग कहा जाता है, वहां पर जो भी कोई आएगा उनको मरना है, भगवान का ये नियम है। लेकिन वर्तमान के जो साइंटिस्ट लोग है वो मृत्यु के साथ चैलेंज देते हैं, वो मृत्यु के साथ टक्कर देते हैं, हमें मृत्यु को रोक देंगे, हमें मृत्यु का सामना करेंगे। भक्ति के द्वारा मृत्यु का सामना करना ये अलग बात है, लेकिन अपनी जो ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने प्रयास, अपने बल के द्वारा, ये आसुरी स्वभाव है। भक्ति के आधार पर यदि करोगे तो वो तो ये ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया के द्वारा जब हम करते हैं तो हमें डिफीट होते, हमें परास्त होना पड़ता है, मृत्यु के सामने झुकना पड़ता है। तो वो साइंटिस्ट जो डॉक्टर के सामने, डॉक्टर थे और साइंटिस्ट, कह रहा था कि डॉक्टर साहब प्लीज मुझे और कुछ दिन के लिए बचा दीजिए, मुझे बहुत कुछ करना है, ये करना है, ये करना है। डॉक्टर साहब क्या बोले, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मृत्यु का जो इलाज है, मृत्यु का दवाई अभी तक निकला नहीं, मृत्यु का दवाई क्या है, भगवान के नाम। लेकिन डॉक्टर ने बोला हमारे ये डिपार्टमेंट के द्वारा तो मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, तो स्पिरिचुअली यू कैन आप ये चीज को आप सोल्यूशन है, आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु का समाधान है, भौतिक दृष्टि से मृत्यु का कोई समाधान सोल्यूशन नहीं है। तो और एक बात है, ये बात भी पृथु महाराज ये बात को कह रहे थे ना, पृथु महाराज ने थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो एक डॉक्टर थे ना कोई, हाँ ये बात हमें देखते हैं भागवत के नवम स्कंध में, मृत्यु रूपी जो घड़ियाल है वो प्रत्येक व्यक्ति का पीछा पीछे है, प्रत्येक व्यक्ति के पीछा कर रहा है, वो कैसे मैं ये व्यक्ति को मेरे जावड़ में ले जाऊं। आज जब ऐसे हमें देखें, जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग उसको श्मशान में लेके जाते हैं और मशान में उनको जला करके वो वापस आते हैं। जब आते हैं तो मशान जो है वो हंसता है, तो मशान हंस करके ये कहता है, तो आप क्या सोच रहे हो, आप यहाँ पर नहीं आने वाले हो, आप भी वो व्यक्ति आज आया है और आप भी कल आने वाले हो, तो एक ही ना एक ही दिन हमें श्मशान में जाना है, ये बात हमें जानते हैं। लेकिन ये संसार की माया मोह के द्वारा बद्ध जीव इतने जोर से बंधा हुआ है, ये संसार के भोगों के द्वारा इतने बंधे हुए हैं हम लोग, ये संसार की भोग हमको भुला दिया है, हमें एक दिन मरने वाले हैं, ये संसार की भोग हमें भुला दिया है कि हमें एक दिन मरना है, ये बात को भुला दिया है। लेकिन हमें ये सत्य को देख ही नहीं पा रहे, यदि वो सत्य है लेकिन भोगबुद्धि के द्वारा ये सत्य को हमें दर्शन नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए हमें देखते हैं कि जब तक हमें इस शरीर के प्रति आसक्त रहेंगे, हमें देखते हैं जब मृत्यु आती है ना, एक व्यक्ति को भक्ति वेदांत से नानावटी कई हॉस्पिटल चेंज करता है, कई इलाज कई इंजेक्शन उनके शरीर में घुसाया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे जबड़ में आ जाता है, मृत्यु रूपी मुंह में आ जाता है, कितने भी चिल्लाए चिंगारे, जैसे सांप के मुंह में जब मेंढक आ जाता है ना, तो मेंढक कितना भी चें चें करे तो मृत्यु रूपी सांप के मुंह से कहाँ छूटने वाला है। ठीक उसी प्रकार हमें कितना हॉस्पिटल बदल दिए, किसने इलाज बदल मेडिसिन बदल दिए, लेकिन मृत्यु के काल में एक बार आ जाने के बाद तो ये सब काम नहीं करता है, ये सब कुछ काम नहीं होता है। और जो व्यक्ति संसार में जितने अपने शरीर के प्रति आसक्त है, मृत्यु के समय उनको उतना अधिक कष्ट होगा, क्योंकि अंतिम समय में ये शरीर से आत्मा को खींच खींच के, जो व्यक्ति जितना शरीर के प्रति आसक्त रहेगा तो उसको ये शरीर को, क्योंकि शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, तो लेकिन उनको शरीर छोड़ना है, लेकिन शरीर छोड़ना नहीं, जो जीव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है उनको जबरदस्ती वो खींच खींच करके आत्मा को शरीर से निकाला जाता है। और जितने में अधिक ये शरीर के प्रति आसक्त रहेंगे उतना मृत्यु के समय अधिक कष्ट होगा। और मृत्यु के समय देखें वो सारा संसार को छोड़ करके अकेले जाना होता है। अब जो मृत्यु का जो रास्ता है तो बड़े ही बहुत कठिन है। वो समय भागवतों में बताया गया है कि ऊपर से सूर्य का ताप के द्वारा तपाया जाता हो, और वो रास्ता जो है बालू का रास्ता होता है, और नीचे से आग के द्वारा वो बालू को तपाया जाता है नीचे से, और ऊपर से सूर्य के द्वारा नीचे से आग के द्वारा वो जमलो मृत्यु के रास्ता को एकदम गर्म किया जाता है, और ऐसे तपाए हुए रास्ता में वो व्यक्ति को लिया जाता है। कोई गाड़ी में नहीं, अभी ये भौतिक संसार में यदि कोई व्यक्ति पाप करता है उनको तो पुलिस आ करके गाड़ी में जीप में बैठा के लेके जाता है, लेकिन जमराज के लोग ऐसे ऐसे होते हैं तो वो जो रास्ता है ना, ऊपर से सूर्य और नीचे से आग, ये दोनों तरफ से वो रास्ता को एकदम गर्म किया जाता है, ऐसे गर्म गर्म रास्ता में उनको कंधे में बैठा के लेके नहीं, पर चला के लेके जाते हैं, और खाली चलाए नहीं, पीछे से डंडा भी पड़ता है, पीट मार करके गाली दे करके वो रास्ता में उसको व्यक्ति को लेके जाते हैं। हमें यहाँ पर देखते हैं यदि कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है ना, तो पुलिस आकर के गाड़ी में बिठा करके लेके जाता है, तो रास्ता में यदि उसको कोई कुछ प्यास लगे और पानी पीने के लिए बोले तो पुलिस पानी के जगह में उनको दंडा देता है। यदि वो पुलिस को पैसा मिलता है कि ये लोगों को थोड़ा पानी पिला लेना, जूस पिला लेना, तो भले पैसा भी मिलके रहता है पहले से, लेकिन जब वो कहता है मुझे थोड़ा पानी पिला दो, पानी की जगह मैं उनको और दंडा, जो पानी मांगता है ना और दंडा में पिटाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भौतिक संसार में मृत्यु के जगह ऐसा, जमराज की जगह ऐसा ही बनाया गया है। वहां पर जितने आप उस विषय में बात करोगे अधिक और अधिक अधिक कष्ट मिलने वाली है। तो इसीलिए ये सब कष्ट आने के पहले हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। आप लोग देखेंगे भागवत के नवम स्कंद में, नवम ना आठ में, जब गजेंद्र अपने परिवार के लोगों को लेकर के खुशी मना रहा था, तो मृत्यु यही नहीं सोचा कि हाँ वो अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ा खुशी कर रहा है, नहीं ये समय जाना ठीक नहीं है, हाँ मैं ये समय थोड़ा रोक जाऊं ना, मृत्यु का कोई विचार नहीं, कभी भी आ सकती है वो मृत्यु, क्योंकि भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत को कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और भौतिक जगत में जो भी कोई है उनको भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये भौतिक जगत को तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए, वो जगह पर कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हाँ इसलिए ये जगत और ये जगत में रहने वाला कोई भी वस्तु का हमें आश्रय लेना नहीं चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो गजेंद्र था अपने परिवार के, हम ही सोचते हैं मेरे पत्नी बचाएगा, मेरे बच्चे बचाएंगे, मेरे परिवार बचाएंगे, हाँ तो पैसा बचाएगा, ये सब जो है माया का एक रूप है, हाँ ये माया में, ये हम माया में है, और ये माया के द्वारा हमें सत्य को दर्शन नहीं कर पाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं असलियत को। तो ये गजेंद्र अपने परिवार को लेकर के जब खुशी मना रहा था तो मृत्यु आया, और जब मृत्यु आया वो तुरंत वो छटपटाने लगा, ऐसे तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रही है, हाँ भोग में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक मृत्यु हमारे पर टूट पड़ता है ना, हम छटपट होते हैं, नहीं जाना है, लेकिन क्या करें, नहीं जाना है कहने से काम नहीं चलने वाला है, जाना होता है। ठीक उसी प्रकार ये गजेंद्र अपने परिवार को लेकर के जब खुशी कर रहा था, ठीक उसी समय मृत्यु उनके ऊपर टूटा आया, कूद पड़ा, हाँ और जब कूदा मृत्यु आया उनके जीवन में, तो वो गजेंद्र क्या कहा अपने पत्नी को, कहा पहले कि एक व्यक्ति के जीवन में अपने पत्नी जो है अधिक निकट होती है, हाँ तो गजेंद्र यही कहा पहले अपने पत्नियों को कि आप लोग ही मेरे जीवन में अति निकट के हो, करीब हो, तो आप लोग ये समय में मुझे थोड़ा साथ दो। लेकिन पत्नी ने कुछ कर नहीं पाया, उसके बाद गजेंद्र ने अपने बच्चों को ये मामले में थोड़ा मदद मांगा, बच्चे लोग भी कुछ कर नहीं पाए, और अपने परिवार संबंधी जो और कोई लोग थे उनके साथ, तो कोई उनको मदद नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमें निर्णय साफ साफ हिसाब कर लेना चाहिए, तो ये सब कुछ भी काम में नहीं आने वाली है, हमारे पत्नी बच्चे हमारे परिवार, हमारा पैसा, हमारा घर के लोग परिवार, ये सब कुछ काम के नहीं है, और हमारे जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु, उनको यदि कोई व्यक्ति टाल दिया, उनका यदि कोई व्यक्ति उपाय ढूंढ लिया, तो फिर उनका जीवन में और कुछ समस्या नहीं है, समस्या है तो जीवन में हमारा मृत्यु है, यही समस्या है। लेकिन ये समस्या का समाधान ना हमारे पत्नी कर पाती है, ना हमारे बच्चे के हाथ में है, ना हमारे परिवार, ना हमारे घर के लोग, कोई हमारे ये समस्या का समाधान, कोई हमारा साथ वो समय कोई नहीं देने वाला है, ये सब कोई कुछ काम करने वाले नहीं है। तो जब गजेंद्र इस प्रकार का अच्छी तरह से समझ गया, तो उन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही मृत्यु का जो समाधान है, ये गजेंद्र जो गजेंद्र कोई सामान्य नहीं थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने हमें मृत्यु का समाधान कैसे करना है ये उपाय बताया। ये भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। हाँ भक्त लोग क्यों भयभीत है, ऐसे तो भौतिक लोग तो भयभीत है, भौतिक जगत में जो है तो वो लोग तो भयभीत है, लेकिन भक्त लोग भी डरे हुए रहते हैं। भक्त लोगों का डर भी अच्छा है, क्योंकि भक्त लोग इसीलिए डरे हुए हैं मैं माया में चले ना जाऊं, कि मेरा भक्ति खराब ना हो जाए, कि मेरे भीतर कोई काम वासना ना आ जाए, मेरा भक्ति नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसके ये सब चीजों को लेकर के भक्त भयभीत है। हाँ कोई फिल्म एक्टर डरता है कि मेरे चमड़ी में मेरे स्किन में कुछ ये ना आ जाए, हाँ कुछ खराब ना हो जाए, मेरा स्किन खराब ना हो जाए, हाँ इसलिए वो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, कई कई उपाय कर लेते हैं। हाँ तो मृत्यु से बचने के लिए लोग कई कई उपाय कर लेते हैं, लेकिन कहाँ बचना होता है, हो नहीं पाता है। लेकिन भगवान उनका समाधान बताते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये मृत्यु रूपी भय भगवान बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरा थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया, हाँ त्रायते महतो भयात्, मैं उनको बहुत बड़ा विपत्ति से बचा लूंगा। इसका स्पष्ट प्रमाण अजामिल के जीवन में दिखा गया है। अजामिल केवल अपने पुत्र को बुलाया नारायण करके, पुत्र को बुलाया नारायण करके, वो मृत्यु रूपी भय से बच गया, बचा गया। यदि भगवान के भक्तों के दर्शन मात्र से मृत्यु का मृत्यु से बचाया जा सकता है, मृत्यु से बच सकते हैं, तो उनका संगति किया जाए, उनका आश्रय लिया जाए, तो फिर क्या और अधिक क्या फल, आगे और कितने बड़ी फल नहीं मिलने वाला है। तो ये भी विषय को हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। और हम कभी कभी देखते हैं तो पिता माता बोलते हैं कि ये बच्चा को मैंने जन्म दिया, और कभी कभी ये भी होता है पिता माता के सामने ही बच्चा का मृत्यु होती है। तो पिता माता को यहाँ पर देखना है, यदि ये बच्चा को आप लोग जन्म दिए हो, जन्म तो दिए हो ना, तो अभी मृत्यु होती, मृत्यु से भी बचा लो। यदि जन्म दे सकते हो तो मृत्यु से क्यों नहीं बचा सकते हो। तो असलियत में हमें हमारा जो जन्म और मृत्यु है ये भगवान के हाथ में, हमारे जो कर्म है ये कर्म है, हमें संसार में आके ऐसे ऐसे घिनौने कर्म कर लेते हैं, ये कर्म हमें बार बार मारता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार बुढ़ापा, बार बार बीमारी, ये कर्म का खेल है। ये बद्ध संसार है, जो बद्ध जीवों के भीतर भोगने की जो प्रवृत्ति है, ये भोग प्रवृत्ति बद्ध जीवों के भीतर इंद्रिय तृप्ति इतने जोर है, इंद्रिय तृप्ति बद्ध जीव को बार बार मारता है, बार बार मारता है, बार बार जन्म देता है, बार बार। हमें कभी कभी दिखा जाता है कि जो हमें इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, ले साधु आके कहता है इंद्रिय तृप्ति छोड़ दो, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आपका मृत्यु होती है। आप लोग देखे होंगे बंदर जो होता है ना, बंदर मटका के भीतर चना है, लेकिन बंदर जब अपने हाथ को मटका के भीतर घुसाता है और ये चना को अपने हाथ में लेकर के वो खाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो खा तो नहीं पाता है, वहीं पर वो लटक जाता है। ले कोई दूसरे बंदर आके उनको उपदेश करता है, कहता है अरे ये हाथ छोड़ दो, हाँ आप हाथ जो ये हाथ से पकड़े रखे हो, हाँ तो उसको छोड़ दो, आप ये समस्या से मुक्त हो जाओगे। उसी प्रकार जो कोई भगवान के भक्त आके कहते हैं कि संसार को छोड़ दो, हाँ लेकिन हाँ उनकी आवाज़ हमें सुन करके भी सुन नहीं पाते हैं, हमें छोड़ नहीं पाते, बंदर हम सब एक प्रकार के बंदर हैं। हाँ ये संसार के भोग करने की प्रवृत्ति हमारे भीतर इतने जोर है, हमारे हाथ में जो आ गया है उनको हमें छोड़ना नहीं चाहते। यदि हमें जानते हुए नश्वर है, पर ये शरीर नश्वर है, ये परिवार नश्वर है, झूठी प्रतिष्ठा मान सम्मान आदर हमें जो बाहर से मिलता है ये सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है, ये जान बुझ करके हमें उसी में रमना चाहते हैं, उसी के भीतर हमें पड़े रहना चाहता है। व्यक्ति धन छोड़ सकता है, अपने स्त्री को भी छोड़ सकता है, लेकिन ये संसार के भौतिक संसार में जो मान प्रतिष्ठा की जो भोग है, मान प्रतिष्ठा आदर सम्मान ये सब चीजों के जो बद्ध जीव छोड़ नहीं सकता, सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन ये चीज को वो इतने जल्दी नहीं छोड़ सकता है। इसके द्वारा हमें बहुत बड़े चीज को हमारे हाथों से जाने देते हैं। तो हमें यहाँ पर निर्णय करना है कि हमारा जो जन्म मृत्यु है हमारे पिता माता नहीं है। बैंक कैशियर दिन भर पैसा गिनता है, उसका मतलब नहीं है कि वो सारे पैसा का मालिक है। उसी प्रकार पिता माता बच्चे को जन्म दे दिए करके पिता माता को यही सोचना नहीं चाहिए कि पिता माता ये बच्चे का जन्मदाता हमें है। हमें भगवान ये चीज को दिया सुरक्षा देने के लिए। यदि मुझे कुछ हमारे हाथ में आया, हमारे पास हमारे जीवन में जो वस्तु आया उनको भगवान हमें हमारे पास इसीलिए भेजे उनको सुरक्षा दें। आज जब कोई एक छोटा सा बच्चा का देखभाल पिता माता के द्वारा नहीं होता है तो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है, उनको सुरक्षा देने के लिए पिता माता है, माध्यम है, लेकिन जो असल में उनका जो उत्पत्ति है, सोर्स है, वो भगवान है, पिता माता नहीं है। जब तक गुरु का आश्रय गुरु का संरक्षण शिष्य को नहीं मिलता है तो शिष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। जब तक भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद कृपा एक बद्ध जीव को प्राप्त नहीं होता है तो वो बद्ध जीव मुक्त जीव बन नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार पिता माता उनको सुरक्षा उनको मदद कर सकते हैं, और वो उनका सृष्टि वो नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये बात के ऊपर निर्णय ले करके हमें आखिर में यही पहुंचना चाहिए। जैसे उत्तरा ने, वो जानती थी कि हाँ ये जो मेरे गर्भ में जो बच्चा है उनको मैं बचा नहीं सकता, इसीलिए भगवान के शरण में गया। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते न अन्यं अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हाँ, उत्तरा ने भगवान के शरण में गया। हालांकि पांडव लोग वहीं पर खड़े थे, आ बड़े बड़े धनुर्धर थे, बड़े बड़े वीर थे, लेकिन उत्तरा ने किसके शरण में गया? भगवान के शरण में। आप ही एकमात्र मुझे बचा सकते हो। हार भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एक पद गाते हैं, भजौरे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रिंदरे। हे मन, आप अभय चरण चरणारविंद जो नंद नंदन है, यदि अभय होना चाहते हो तो उनके शरण में जाओ, उनके चरण की भजन करो। और श्रील सुखदेव गोस्वामी भी यही बात को बताते हैं, आपन्न संस्मृति गुणान, आपन्न संस्मृति सॉरी घोरन, बद्ध जीव ये संसार में बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ है, गिर चुका है। वो क्या है विपत्ति? ना जन्म और मृत्यु, आपन संस्मृति। आपन बहुत बड़ी दुख में है, बद्ध जी बहुत बड़े दुख में है, लेकिन भगवान कहते हैं यतनाम विवशो गृणन। लेकिन किसी भी ये विवश, ये जन्म मृत्यु असहाय अवस्था, ये विवश अवस्था में यहाँ यदि कोई मेरा नाम गृणन उच्चारण करता है, तथा शब्द विमुच्यते, भगवान बाधा करते हैं, मैं उनको तथा तुरंत उनको हाँ ये झामेले से ये संकट से मैं उनको मुक्त करा देता हूँ, तथा शब्द विमुच्यते। हाँ, तो यहाँ पर हमें यही फैसला लेना है, निर्णय लेना है। हाँ, मृत्यु रूपी भय से, ये संसार की भय से हमें बचना है, तब भगवान की शरण में जाना है। और भगवान के शरण में हमें जैसे ही जाते हैं तुरंत ही भय से हमें पार हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। आप लोग सुने होंगे वो कौन थे, गोपीनाथ पटनायक को जब राजा प्रताप रुद्रदेव का जो बेटा था, बड़ा लड़का, तो उनको फांसी में चढ़ा दिया। जब फांसी में चढ़ा दिया तो सारे भक्त लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु को कहें कि प्रभु आप यदि प्रताप रुद्रदेव को कहोगे तो ये फांसी का सजा रुक जाएगी और ये गोपीनाथ पटनायक ये मृत्यु से बच सकता है। तो आप उनको राजा प्रताप रुद्रदेव को कहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहें कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं ये मामले में बात नहीं कर सकता। हाँ, तो सारे भक्तों लोग बार बार जब कहने लगे चैतन्य महाप्रभु को, हाँ कहें कि ये गोपीनाथ पटनायक रामानंद राय का भाई है और रामानंद राय जो है आपका प्रिय भक्त है, हाँ और गोपीनाथ पटनायक उनका भाई है, तो आप जाके कुछ करिए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहें, तो आप लोग सब जाइए जगन्नाथ जी को प्रार्थना कीजिए। तो जगन्नाथ जी जब चाहेंगे तो जगन्नाथ जी का कृपा से वो व्यक्ति बच सकता है। तो दूसरे मुहूर्त में देखा गया तो राजा प्रताप रुद्रदेव जो गोपीनाथ पटनायक को वो फांसी के सजा से छुड़ा दिए, पर छुड़ाए नहीं, उनके जो वेतन है वो वेतन को वो पेंशन के रूप में उनको दिए। तो यहाँ पर शास्त्र के द्वारा हमें यही देखा जाता है, तो ये डर से, ये संसारिक भय से हमें बचना है। भगवान बुलाते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, एक का शरण लेना है, वो है भगवान। हाँ, और कहाँ पर भी आप शरण लो, मृत्यु से बच नहीं सकते। भगवान कहते हैं जन्म यान्ति दवाव्रता देवान पितृन जाति पितृव्रता भूतानि जाति भूतेज्या, लेकिन मेरे जो भक्त होते हैं मेरे पास आता है। और एक बार भगवान के पास यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर जन्म मृत्यु नहीं होती है। त्यक्त्वादेयं पुनर्जन्म, ये शरीर को छोड़ने के बाद फिर पुनः उनको जन्म लेना नहीं पड़ता है। तब फिर हमें पुनः ये शरीर में न आए, फिर पुनः हमें जन्म न लें, तो इसीलिए हमें भगवान के भक्त बन जाना चाहिए। और कलियुग में भगवान का भक्त बनना बड़े ही आसान है। कलियुग में प्रहलाद महाराज जो भागवत धर्म है उनको अनुशीलन करना बड़े आसान तरीका बताएं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। और कौन सा शास्त्र में बताया गया, हरे नाम और कोई नहीं, कर्म तीन बार नास्तेव कहा गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के द्वारा मृत्यु रूपी संकट से बच नहीं सकते। मतलब तीन बार नास्तेव कहा गया, मतलब कर्म योग नहीं, ज्ञान योग नहीं, ध्यान योग नहीं, केवल भक्ति योग, केवल भक्ति योग के द्वारा हमें मृत्यु से बच सकते हैं। और यही उपाय भी यदि हमें हमारा जीवन में लें तो ये समस्या का हल हो सकती है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। किसी का कुछ प्रश्न है? धन्यवाद।